जायो गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। अश्वदनंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावन जारी यमुना तीरावन जारी। जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र शुद्ध डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की अनंत भक्ति वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम सुखो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासदि गौर भक्ति वृंद की श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की श्री वृंदावन धाम की मायापुर नवदीप धाम की जगन्नाथपुरी धाम की गंगमय की जमुनमय की भक्ति देवी की तुलसी देवी की कलयुग पावन हरिनाम संकीर्तन की बहु प्रेमानंद ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल डिवोटी ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल डिवोटी ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल डिवोटी All glories, all glories, all glories to Sri Guru and Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय पंद्रहवा श्लोक 121 और 132 130 131 और 132 मुकुंदर कहे पुनः मधुर वचन तुम्हार कार्य धर्म धन उपार्जन रघुनंधेर कार्य कृष्ण रसेवन कृष्ण सेवा बिना इन्हर अन्य ना ही मन नर हरि राहु अमर भक्त गण सने यही तीन कार्य सदा करह तीन जने। अनुवाद और तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा। श्री चैतन्य महाप्रभु अगेन स्पोक टू मुकुंद विथ स्वीट वर्ड्स योर ड्यूटी इज टू अर्न बोथ मटेरियल एंड स्पिरिचुअल वेल्थ। श्री चैतन्य महाप्रभु ने मुकुंद से कहा कि आपका कर्तव्य है आध्यात्मिक और भौतिक संपत्ति को अर्जन करना। Furthermore, it is the duty of Raghunandan to always engage in Lord Krishna's service. He has no other intention but the service of Lord Krishna. Raghunandan, jo Mukund ke putra the, unko Mahapur ne agya di ki aap keval Krishna ki hi seva karte raho, kyunki unhe aur dusra ko hi ichha nahi hai. Shri Chaitanya Mahaprabhu then ordered Narahari Sarkar. Shri Chaitanya Mahaprabhu Narahari ko kaha, I wish you to remain here with my devotees. Aap mere bhaktoon ke saath mein unke nikat rahiye. In this way, the three of you should always execute these three duties for the service of the Lord. Is prakar se aap teen log Krishna ki seva is prakar se kijiye. Tatpari. Shri Chaitanya Mahaprabhu set forth three duties for three different people. Shri Chaitanya Mahaprabhu ne teen alag logon ke liye alag alag kartavya bataye. Mukund was to earn money and follow the religious principles. Mukund, usko dhan arjan karna hai aur dharma ka palan karna hai. Whereas Narahari was to remain with the Lord's devotees. और नरहरि को महाप्रभु ने कहा कि उनके भक्तों के साथ निकट रहिए. एंड रघुनंदन वॉज टू एंगेज इन द लॉर्ड सर्विस इन द टेम्पल. और रघुनंदन को श्री चैतन्य देव ने कहा कि वो भगवान की सेवा करते रहे. दस वन पर्सन वर्शिप्स इन द टेम्पल, अनदर अर्न्स मनी ऑनेस्टली बाय एग्जीक्यूटिंग हिज प्रोफेशनल ड्यूटी. तो इस प्रकार से एक विग्रहों की सेवा कर रहे हैं मंदिर में, दूसरे धन अर्जन कर रहे प्रामाणिकता से. एंड येट अनदर प्रीचर एंड अनदर प्रीचर्स कृष्ण कॉन्शियसनेस विद द डिवोटीज. और तीसरे भक्तों के संग में रहते हुए प्रचार कर रहे हैं. अपेरेंटली दिस थ्री टाइप्स ऑफ सर्विस अपियर सेपरेट. बाह्यकारी दृष्टि से तीन सेवा अलग अलग दिखाई देते हैं, बट एक्चुअली दे आर नॉट, परंतु वो अलग नहीं है. व्हेन कृष्णा और श्री चैतन्य महाप्रभु इज द सेंटर, एवरीवन कैन एंगेज इन डिफरेंट एक्टिविटीज फॉर द सर्विस ऑफ द लॉर्ड. जब कृष्ण या श्री चैतन्य महाप्रभु केंद्र बिंदु हो तो अलग अलग लोग अलग अलग सेवा कर सकते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए. दिस इज द वर्डिक्ट ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु. ये श्री चैतन्य महाप्रभु का आदेश, उपदेश या निर्णय है. ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप. नरहरि राहु अमर भक्तगण सने यही तीन कार्य सदा करह तीन जने. श्री चैतन्य महाप्रभु से ऑर्डर्ड नरहरि, आई विश यू रिमेन हियर विद द डिवोटीज. इन दिस वे द थ्री ऑफ यू शुड ऑलवेज एग्जीक्यूट दिस थ्री ड्यूटीज फॉर द सर्विस ऑफ द लॉर्ड. श्री चैतन्य महाप्रभु कविराज गोस्वामी उनको उल्लेख करते हुए आदि लीला में सबके लिए, सब भक्तों के लिए और खास करके जो भारतीय वासी उनके लिए आज्ञा दी है. भारत भूमि तेल मनुष्य जन जन्म सार्थक करी परोपकार. कि जिसका जन्म भारत भूमि में हुआ है उसको अपने जीवन को पूर्ण करते हुए इस ज्ञान को दूसरों को वितरण करना है. ये श्री चैतन्य देव का मेन मुख्य उद्देश्य है कि प्रचार करना, लोगों को कृष्ण भक्ति वितरण करना. परंतु किस प्रकार से प्रचार किया जा सकता है? क्या सब लोग प्रवचन देंगे, सब लोग जाकर लोगों को कथा कराएंगे? जैसे कि अगर कोई بڑا ورکشاپ کھول لیتا ہے. اس ورکشاپ کا موٹو ہے, ادیش ہے کہ جو کچھ وہاں بنایا جاتا ہے اس کو بیچنا. ایک دکان کے سامان ہے. شیلا پرابھوپاد جی کے بارے میں بھکتگن کہتے تھے, پرابھوپاد جی نے ایک فیملی بزنس کو جاری رکھا ہے. گوڑیا ویشنو کا فیملی بزنس کیا ہے, پریوارک ادیوگ کیا ہے, کہ کرشن بھکتی کا پرچار کرنا. تو جو اگر کوئی ایسے ورکشاپ کھول کر رکھتا ہے, ادیش ہے کہ وہاں جو بنتا ہے اس کو بیچنا. پرنتو صحیح پرکار سے وستوں کو بیچنے کے لیے اس ورکشاپ میں پریوار کے لوگ یا باہر کے کام کرنے والے سب کو الگ الگ کرتویہ دی جاتی ہے, اور سب لوگ اپنا اپنا جب کرتویہ نبھاتے ہیں تب پھر جو ان کا پروڈکٹ ہے وہ آسانی سے بھیجا جا سکتا ہے. اگر سب سوچیں گے ہمیں پروڈکشن میں ہی جانا ہے, مارکیٹنگ کوئی نہیں کرنا چاہتا, تو کیا ہوگا؟ بہت پروڈکشن ہوگا لیکن بیچنے کے لیے کوئی نہیں رہے گا. اگر سب کہیں گے نہیں مجھے مارکیٹنگ ہی کرنا ہے, تو مارکیٹنگ کرنے کے لیے سب چلے جائیں گے, مارکیٹنگ کیا کریں گے اگر پروڈکشن نہیں ہے تو. اگر کوئی کہے گا نہیں ہمیں مارکیٹنگ اور پروڈکشن کرنا ہے, مینٹیننس کون کرے گا؟ اگر مینٹیننس نہیں ہوگا تو پھر پروڈکشن اور مارکیٹنگ میں سہیوگ نہیں ہوگا. اس لیے اس انتراشٹری کرشن بھاونامرت سنگھ, جیسے ہم پہلے دن سے چرچا کر رہے تھے, مہاپربھو نے آندولن دیا ہے, مشن سٹیٹمنٹ دیا ہے, کرشن بھکتی کرشن پریم سیوا پرورتن لپت تیرتھ ادھار ویراگیہ شکشن. یہ شری چیتنیہ مہاپربھو کا بزنس ہے, یہ ادیوگ ہے, اور الگ الگ بھکتوں کو الگ الگ سیوا دی جاتی ہے. شیلا بھکتی سدھانت سرسوتی ٹھاکر ان کے ایک ششیہ تھے, ان کو انہوں نے کہا کہ آپ یہاں رہو مام گچھی میں, جتی شیکر پربھو. کب کہے تھے ان کو؟ 1930 یا 1925 سال میں. ان کو کہا یہاں ہی رہ جاؤ, اور ادھر رہتے ہوئے آپ وگرہوں کی سیوا کرو. وہ آگیا مل گئی, آج تک ادھر ہی ہے, وہ سیوا کرتے رہے کیونکہ ان کے گرو جی نے ان کو آگیا دی تھی. تو اس پرکار سے کوئی نشٹا سے سٹیڈیلی اپنے دی ہوئی سیوا کر لیتا ہے تو پھر وہی اس کا پرچار ہے, اس سے لوگ پریورتت ہو جاتے ہیں. اس کے لیے باہر جا کر پرچار کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس ویکتی کے لیے. گیتا میں بھی بھگوان کہتے ہیں شیان سودھرم وگن پرو دھرم سونوشت, سودھرم ندنم شی پرو دھرم بھیاوہ. بھگوان گیتا میں ارجن کو کہتے ہیں, کیونکہ ارجن یدھ چھوڑ کر کشتری دھرم کو چھوڑ کر وہ جو یتی دھرم ہے اس کو پالن کرنے کا پریاس کر رہے ہیں. یتی دھرم کو پالن کرنا یہ کوئی سادھارن چیز نہیں, اچھ ہے. یتی دھرم کو پالن کرنا سارے جو دھرم ہیں کشتری ویشیہ شودر ان سب دھرموں سے یتی دھرم شریشٹھ ہے. یتی ورن اور آشرم کے وہ سوبھاوک لیڈر ہے, نائک ہے, پرنتو اس یتی دھرم کو پالن کرنا سب کے لیے سمبھو نہیں ہے. ادھارن دیا جاتا ہے دودھ پانی سے شریشٹھ ہے, دودھ بھی لکوڈ ہے پانی بھی لکوڈ ہے, لیکن اگر ہم پانی سے نکال کر مچھلی کو دودھ میں ڈال دیں گے سوچ کر کہ دودھ میں اگر مچھلی تیرتا رہے گا تو پھر وہ زیادہ بدھیمان بن جائے گا, دودھ پینے سے بدھی بڑھ جاتی. اگر مچھلی کو نکال کر ہم دودھ میں ڈالیں گے تو کیا ہوگا؟ مچھلی مر جائے گی, وہ بچ نہیں پائے گی. اس کا دھرم ہے پانی میں ہی رہنا, پانی میں ہی وہ بڑھے گا, پانی میں ہی اس کو نریشمنٹ ملے گا, اور پانی میں ہی وہ اپنے سماج کو بڑھائے گا. تو اس لیے شری چیتنیہ دیو अलग अलग भक्तों को अलग अलग सेवा देते हैं अपने अपने स्वभाव के अनुसार। हो सकता है कि एक निर्दिष्ट सेवा सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा उसके बारे में चर्चा की है, लेकिन हमें जानना चाहिए कि मेरा स्वभाव क्या है और उस स्वभाव के अनुसार ही सेवा करना चाहिए। और ऐसे करने से श्री चैतन्य देव संतुष्ट हो जाते हैं। यहां हम देखते हैं मुकुंद जो गृहस्थ थे उनको श्री चैतन्य देव ने कहा कि आप खूब पैसा कमाओ और खूब संपत्ति आध्यात्मिक संपत्ति भी कमाओ। तो कभी कभी जैसे एक भक्त कह रहे थे, एक डिवोटी थे और वो सोचने लगे कि मुझे बहुत प्रभुपाद जी के लिए पैसा कमाना है, खूब कमाकर बहुत सारे मंदिर बनाना है। फिर वो वैसे सोचने लगे, बार बार उसके बारे में चिंतन करने लगे और चालू किया उन्होंने अपना उद्योग, और धीरे धीरे उनकी जो साधना थी वो घटने लगी। सोला माला जप के बदले में वो हमेशा पैसा का चिंतन करने लगे, भक्तों के संग से निकल गए। उद्देश्य क्या था कि प्रभुपाद जी के लिए पैसा कमाओ। यदुवर प्रभु ये कहानी सुना रहे थे और पैसा कमा लिया, बहुत अलग अलग प्रकार से उन्होंने पैसा कमा लिया। और जब भक्तों ने जाकर उनसे पूछा, देखो आपने प्रभुपाद जी के लिए पैसा कमाया है, अभी दो प्रभुपाद जी के लिए, परंतु आध्यात्मिक शक्ति न होने के कारण अपने मुख्य उद्देश्य को भूल गए और पैसा कमाना ही उनका मुख्य धर्म बन गया, उसको देना वो भूल गए। तो यदुवर प्रभु कह रहे थे कि देखो कि वेंट आउटसाइड, बाहर गए पैसा कमाने के लिए, प्रभुपाद जी के लिए कमा भी लिया, लेकिन इसके बीच में क्या हो गया, उनकी साधना खत्म हो गई और साथ साथ जिस कारण के लिए उन्होंने पैसा कमाया वो कारण पूरा नहीं कर पा रहे थे। तो इसीलिए जो गुरुजन है श्री प्रभुपाद जी परंपरा के आचार्य और श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं इतने सुंदरता से श्री चैतन्य देव की जो कहानी है, लीला है, वो दिव्य है और साथ साथ प्रैक्टिकल भी है। कई ऐसे फिलॉसफीज है न तो प्रैक्टिकल है और न दिव्य है, उनको पालन करने से कोई फायदा भी नहीं है, न तो उसको पालन कर सकते। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु की जो तत्व ज्ञान है वो दिव्य भी है और प्रैक्टिकल भी है। इसलिए मध्य लीला के इस अध्याय में श्री चैतन्य देव अलग अलग भक्तों को अलग अलग कहते हैं। उन्होंने वासुदेव को देखा, वासुदेव दत्त जो हमेशा प्रहलाद जी महाराज के भावना में रहते थे, वो हमेशा जो कुछ भी धन आ गया वो खर्चा कर देते थे भक्तों के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ नहीं बचता था। अब इसके बारे में सन्यासी का क्या लेना देना है, सन्यासी कहेंगे मेरे इसमें क्या है, वो कैसे पैसा कमाए खर्चा करे। परंतु श्री चैतन्य महाप्रभु इसको देख रहे थे कि वासुदेव बहुत पैसा खर्चा करते, तो उन्होंने शिवानंद सेन को बुलाया। शिवानंद सेन उद्योग करने में बड़े निष्णात थे, उनको उन्होंने बुलाया, देखिए देखो ये वासुदेव है, ये पैसा ऐसे खर्चा कर लेता है, अपने परिवार के लिए कुछ नहीं बचाता, तो इसलिए आप उसके मैनेजर बन जाओ। ये चैतन्य चरितामृत में आता है कि बिकम इज मैनेजर, उनका धन अब संभालो, देखो कि वो ठीक से खर्चा कर रहे हैं और साथ साथ अपने परिवार के लिए रख रहे हैं। ये सेवा शिवानंद सेन को महाप्रभु ने दिया। और एक सेवा उन्होंने दिया, वो कहने लगे कि शिवानंद सेन मेरे भक्तगण हमेशा जगन्नाथपुरी आया करते हर साल, काफी लोगों के पास पैसा नहीं होता आने के लिए, तो उनको अब स्पॉन्सर करो, ये अधिकृत है भक्तों को यात्रा के लिए स्पॉन्सर करना या कुछ उनके भक्ति में प्रगति करने के लिए मदद करना, ये कोई आजकल का नहीं है। श्री चैतन्य देव ने शिवानंद सेन को आज्ञा दी थी कि आप उनको मदद करते रहो, इसलिए शिवानंद सेन हर साल श्री चैतन्य महाप्रभु के इच्छा से सारे भक्तों को जगन्नाथपुरी ले जाते थे और सब भक्तों का रहना उनका खाना उनके द्वारा होता था। अब महाप्रभु ने शुक्लंबर ब्रह्मचारी को यह आज्ञा नहीं दिया कि शुक्लंबर ब्रह्मचारी आप सबके लिए यात्रा बनाओ, क्यों? क्योंकि शुक्लंबर ब्रह्मचारी भीख मांगते थे, भिक्षा मांगते थे और भिक्षा मांगकर वो जीवन निर्वहिका करते थे। लेकिन जितने शिवानंद सेन महाप्रभु के लिए प्रिय थे उतने ही शुक्लंबर ब्रह्मचारी प्रिय थे, उनके साथ उतना ही संबंध था। और महाप्रभु सर्वम भट्टाचार्य को कहते हैं कि सर्वम भट्टाचार्य, इस कलयुग में दो प्रकार से भगवान अवतार लेते हैं, एक है दारु ब्रह्म जगन्नाथ के रूप में और दूसरा है जल ब्रह्म गंगा के रूप में। दो प्रकार से भगवान अवतार लेते हैं, एक जगन्नाथ जी के रूप में और दूसरा गंगा जी के रूप में। गंगा ये भगवान के जो लिक्विड भगवान है, केवल गंगा जी का स्पर्श करने से, देखिए भगवान कितने दयालु है, उनको उनके चरणों को प्राप्त करना बहुत कठिन है, लाखों साल तपस्या करने पर भी उनके चरणों का दर्शन नहीं होता। परंतु कृष्ण इतने दयालु है, अपने चरणों से निकली हुई जो जल है विष्णुपदी गंगा, उसको स्वर्ग लोगों में फिर बाद में पाताल लोगों में और पृथ्वी लोगों में छोड़ देते, उसके स्पर्श से ही लोग पवित्र हो जाए, शुद्ध हो जाए, उसके तट पर रहकर कृष्ण की सेवा करने से, उसकी सेवा करने से निश्चित रूप से आध्यात्मिक जीवन में प्रगति हो सकती है। तो भट्टाचार्य को श्री चैतन्य देव ने कहा आप दारु ब्रह्म की सेवा करो, और विद्यावाचस्पति जो सर्वम भट्टाचार्य के भाई थे उनको उन्होंने कहा कि अब जल ब्रह्म की सेवा करो, भगीरथ की सेवा करो। तो इस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु अलग अलग भक्तों को अलग अलग सेवा देते हैं और उनके सेवा को देखकर बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। रूप सनातन हरिदास ठाकुर, रूप और सनातन इतने बड़े प्रखंड पंडित, उनको महाप्रभु ने क्या किया, उनको अपने से अलग कर दिया। खुद जगन्नाथपुर में निवास कर रहे थे, सबसे निकट रूप और सनातन इतने निकट थे महाप्रभु के लिए, कोई सोच भी नहीं सकता। जब रूप गोस्वामी ने एक पद्य लिखा, हम इसको पढ़ते हैं जगन्नाथ रथ यात्रा के समय, वो इतना सुंदर पद्य था। महाप्रभु हमेशा रथ यात्रा के सामने सिनेमा सॉन्ग गाते थे। अगर सोचो रथ यात्रा चल रही है और मेन लीडर कीर्तन गाने वाले कुछ फिल्मस गाना गा रहे तो हम उसको भगा देंगे, ये क्या कर रहे तुम। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु ऐसे ही साधारण कुछ गाना गा करते थे और सब लोग भ्रमित हो जाते थे, बाहर के लोग ये क्या कर रहे, समझ में नहीं आता था। लेकिन जानते थे कि महाप्रभु भगवान है, श्री चैतन्य देव सबसे बड़े सन्यासी है, उनको लगता था इसमें कुछ तो रहस्य है, कोई समझ नहीं सका। और जब रूप गोस्वामी वृंदावन से आए, उन्होंने इस पद्य को सुन लिया तो उनके रोंगटे खड़े हो गए, वो सिद्ध बकुल चले गए हरिदास ठाकुर के भजन कुटीर में, वहां ही निवास कर रहे थे, और तुरंत उसके तात्पर्य के रूप में उन्होंने एक पद्य लिखा और उसको भजन कुटीर के जो ऊपर छात है उसमें उसको अटका दिया। श्री चैतन्य देव स्नान कर कर आए और उनको अक्षर दिखाई दिया, रूप गोस्वामी के जो अक्षर है वो रत्नों के समान, मोतियों के समान है। अगर आप वृंदावन इंस्टीट्यूट में जाओगे, उधर कृष्ण बलराम मंदिर के उसी रास्ते से, फोगलाश्रम मंदिर के उसी रास्ते में है, वहां उनके अक्षरों को आप देख सकते हो। तो वहां पर बड़े इतने आकर्षित हो गए, वो आकर उसको पढ़ने लगे, अक्षर इतने सुंदर और उससे जो लिखा गया था वो इतना उनको आनंद दिया। तो महाप्रभु जाते हैं और रूप गोस्वामी को जबरदस्ती से अपने गोद में बिठाते हैं। देखो रूप गोस्वामी इतने बड़े हैं, पंडित है, कोई बालक नहीं है, और एक चापा देते हैं उनको, केवल प्रेम हो तो ये ऐसा कर सकते हो। और उनको कहा, आपको मेरा मन कैसे समझ में आया? कोई मुझे मेरे मन को समझ नहीं सकता, आपने कैसे समझा? हम खुद अपने मन को समझ नहीं सकते, कहां जा रहा है, किधर जा रहा है, क्या कर रहा है। चंचल मन ही कृष्ण अर्जुन ने कहा। तो फिर भगवान के मन को कैसे समझना? उनका मन चंचल नहीं है, वो चंचलापति है, जो लक्ष्मी चंचला है उसके भी स्वामी स्वामी है। भगवान किस प्रकार से व्यवहार करते हैं साधारण लोग जान नहीं पाएंगे। गीता एक कृष्ण के बारे में बताया गया है, कृष्ण तत्व के बारे में, ईश्वर क्या है, जीव क्या है, प्रकृति क्या है, काल क्या है, कर्म क्या है, लेकिन इसको भी समझ नहीं सकते लोग। सरल भाषा में भगवान कह रहे लेकिन फिर भी समझ नहीं पाते। कितने सारे कॉमेंट्रीज है गीता के ऊपर, प्रभुपाद जी कहते हैं, लेकिन विरला है जो कोई कृष्ण को भगवान करके स्वीकार कर सकता है। सो उसमें ही कंफ्यूजन है। फिर जब कृष्ण लीलाओं को रचाते हैं, भागवत में हम कृष्ण के लीलाओं को देखते हैं, इन लीलाओं को देखकर और भी लोग भ्रमित हो जाते हैं, जो नास्तिक है, जो भक्त नहीं है। जैसे एक बार हमारे मंदिर में एक बुद्धिस्ट आए थे, कोरिया से, ऑस्ट्रियन थे, लेकिन वो कोरिया के एक मॉनेस्ट्री में पढ़े थे बुद्धिस्ट का धर्म, वो मंदिर में आए थे। कोई भक्त, हमारे भक्त उनको मंदिर में ले आए और उनको नरसिंह देव को फोटो दिखाया, बोला ये हमारे भगवान है। और वो क्या कर रहा है, वो एक व्यक्ति का सर्जरी कर रहे है। वो चकरा गए क्योंकि उनका धर्म क्या, अहिंसा परमो धर्म। तो यहां नरसिंह देव क्या कर रहे है, एक व्यक्ति का पेट फाड़ रहे और उसके बाजू में एक छोटा सा बालक खड़ा हुआ है। तो उसने पूछा, हू इज दिस? बोले, जिसकी जिसका ऑपरेशन चल रहा है उसके पुत्र है। और वो अभी भगवान नरसिंहदेव को फूल की माला पहनाएगा। वो इतने, उनको इतना शौक बैठ गया, अगले तीन दिन वो मंदिर में आए नहीं। बोला, आई कांट अंडरस्टैंड दिस काइंड ऑफ गॉड। वो किसी को मार रहे और उसमें आनंद ले रहे, और उनका जो पुत्र है जिसका मर्डर हो रहा है, वो अपने पिता का जो मर्डर है उसको गार्लैंड जाने के लिए डाल रहा है। ये कैसा धर्म है, वो समझ नहीं पाए। जैसे रशिया में जब हाल ही में जो क्रिश्चियन जो पादरीगणों ने क्या किया, वो जो मंदिर है उसको बंद करना चाहते हैं, रुकावट लाना चाहते हैं कि मंदिर नहीं बनाओ इधर। तो फिर उसके समय उन्होंने भगवद गीता का एक श्लोक कोट किया, उसमें क्या कहा उन्होंने कि देखो ये लोग राक्षसों की पूजा करते हैं, ये कोई सभ्य लोगों की पूजा नहीं करते है। देयर रिलीजन इज द रिलीजन ऑफ वर्शिपिंग घोस्ट एंड डीमंस। क्यों? कि उसमें भगवान गीता में दसवें अध्याय में कहते हैं, दैत्यानाम प्रह्लादोऽस्मि, जो दैत्यगण है उसमें मैं प्रह्लाद हूं। देखो दैत्य मतलब क्या, राक्षस। तो कृष्ण राक्षस है और उनकी पूजा कर रहा है, तो इसलिए इसको रुकावट डालना चाहिए। एक्चुअली वो लोगों ने लिखकर सरकार को भेज दिया। जैसे कि और एक जगह में जब कृष्ण जब रासलीला रचाते हैं उसको देखकर एक व्यक्ति कोर्ट में चले गए, उन्होंने कहा हरे कृष्ण वालों को बैन करना चाहिए। बोले क्यों? क्योंकि वो लोग क्या कर रहे हैं, ये ऐसे व्यक्ति की पूजा कर रहे हैं जो इतने सारे स्त्रियों के साथ विवाह कर लेता है और अन्य स्त्रियों के साथ उसका संबंध है। तो ऐसे भगवान की पूजा करने का धर्म हमारे देश में नहीं चलना चाहिए। एक्चुअल में कोर्ट में चले गए। तो फिर जो कोर्ट का जो न्यायाधीश था उन्होंने, और जो कोर्ट में गए थे वो एक ऐसे ही क्रिश्चियन धर्म का एक चर्च के वो एक मैनेजमेंट में थे, और जब केस चालू हो गया तो न्यायाधीश ने पूछा कि सो दिस इज योर आर्ग्यूमेंट, ये आपका वाद है कि ऐसे भगवान की पूजा नहीं करनी है क्योंकि वो अधर्म का पालन कर रहे हैं, अधर्म को वो बढ़ा रहे। तो उन्होंने पूछा, लॉयर जज ने पूछा, ठीक है आपके धर्म में जब जो नंस होता है, नंस यानी कि जो ब्रह्मचारिणी उनके धर्म में जो नंस होता है उनको जब नन का दीक्षा दिया जाता है वो अविवाहित होती है। उनको जज ने पूछा जब वो नन की दीक्षा लेती है उस दीक्षा का एक प्रॉमिस करना पड़ता है उनको, जैसे हम लोग चार नियम को बोलते कि हम चार नियम का पालन करेंगे, तो आपका एक प्रॉमिस क्या है? अब नंस लोगों को क्या कहते हो? तो उन्होंने कहा नंस लोग वचन लेते हैं कि हमारे लिए और कोई पति नहीं है, हम किसी पति को स्वीकार नहीं करेंगे अलावा जीसस क्राइस्ट को। तो नन ये देखकर न्यायाधीश ने कहा मतलब जितने भी नंस आज है वो सब जीसस क्राइस्ट के पत्नी है, तो जीसस क्राइस्ट कहां का ब्रह्मचर्य है? फिर केस डिसमिस हो गया। ये सत्य कहानी है, यानी कि देखो कृष्ण एक लीला करने से ये सारा कोर्ट में भी चला जाता है। लोगों को इतना कंफ्यूजन है, कृष्ण के बारे में जानना, कृष्ण के कार्यों के बारे में जानना और कृष्ण के मन को जानना और भी कठिन है। तो रूप गोस्वामी एक क्षण के अंदर जान गए भगवान के मन को, तो इसलिए श्री चैतन्य देव इतने उनके प्रति प्रसन्न हो गए, उनको अपने गोद में बिठाकर उनको एक चापा लगाया। दो ही कहानी आती है चैतन्य चरितामृत में चापा लगाने का, श्री चैतन्य देव स्वयं एक रूप गोस्वामी को, एक दूसरा बलभद्र भट्टाचार्य को। बल्लभद्र भट्टाचार्य कह रहे थे कि मुझे कृष्ण को देखने के लिए जाना है, जब वह वृंदावन गए थे महाप्रभु जी के साथ। ऐसे सब जगह में रूमर्स फैल गया था, अफवाह फैल गया था कि भगवान फिर से आ गए हैं वृंदावन में। वो काले के दह में काले के ऊपर नृत्य कर रहे, तो सब लोग आकर महापुरुष से कहते कि देखो भगवान कृष्ण आए हुए है। ये सुनते सुनते बल्लभद्र भट्टाचार्य भ्रमित हो गए, देखिए महाप्रभु से महाप्रभु के निकट रह रहे कृष्ण है, उनके साथ उनका निवास चल रहा है, लेकिन फिर भी वो कहने लगे महाप्रभु मुझे भी देखना है कृष्ण को, मुझे छोड़ो जाने के लिए। तो तब श्री चैतन्य देव ने क्या उनको भी एक चापा लगाया, बोला कहां कलयुग में भगवान प्रकट होते हैं, तुम क्यों ऐसे पागल हो गए हो? प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते भ्रम यानी कि क्या, साधारण जीव को कृष्ण समझना और कृष्ण को साधारण समझना, और बल्लभद्र भट्टाचार्य इस भ्रम में पड़ गए। श्री चैतन्य देव के साथ होने पर भी, और तुरंत कई ब्राह्मण आकर कहने लगे एक्चुअली में कृष्ण कोई नहीं है, जो मछली मार हर रोज मछली पकड़ने के लिए जाता है लैंटिन लेकर, तो जब वो अपने नाव पर मछली पकड़ने के लिए खड़ा रहता है तो नाव को लोग समझते कालिया, वो ऐसा हिलता रहता है आगे पीछे, और जो मछली मार आगे पीछे भ्रमण कर रहा है उसको कहते कि कालिया नृत्य कर रहे, कृष्ण काले के ऊपर नृत्य कर रहा है, और वो जो लैंटिन है लोग समझते कि कालिया का मणि है, यानी कि साधारण मछली मार को लोगों ने भगवान कृष्ण बना दिया। तो इस प्रकार से महाप्रभु ने क्या कहा, रूप गोस्वामी इतने नकट थे लेकिन फिर भी उनको वहां से भेज दिया, जाओ वृंदावन जाओ और अपनी सेवा करो। उनके अंदर इतनी शक्ति थी, वो भक्तों के संग से रहित होकर भी शास्त्रों की रचना करने लगे, जो लुप्त तीर्थ उसका उद्धार करने लगे और वहां निवास करते हुए प्रचार करने लगे। और 500 साल पहले रूप और सनातन समय जब निवास कर रहे थे, किसी ने सोचा था क्या कि ये सारे दुनिया पे प्रसिद्ध हो जाएंगे? उन्होंने कभी नहीं सोचा था। भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ के अमुख में लिखते हैं रूप गोस्वामी, ये जो ग्रंथ मैंने रचना की है ये केवल मेरे मित्रों के लिए और मेरे बड़े भाई सनातन गोस्वामी की प्रसन्नता के लिए। श्रील प्रभुपाद जी चैतन्य चरितामृत के इंट्रोडक्शन में लिखते हैं आई एम कंपाइलिंग दिस बिकॉज माई फ्रेंड्स वॉन्टेड मी टू राइट। कभी नहीं सोचा था कि हम प्रसिद्ध बन जाएंगे। प्रभुपाद जी उदाहरण देते एक स्त्री का, जब श्रील प्रभुपाद जी राधा दामोदर के मंदिर में निवास किया करते थे, हर रोज वो देखते थे एक बूढ़ी स्त्री वो यमुना में जाकर पानी लेकर आती थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि मैं पानी लाऊंगी और ये स्वामी जी देखेंगे भक्ति वेदांत और अपने किताब में मेरे बारे में लिखेंगे। स्वाभाविक रूप से वो सेवा कर रही थी, प्रभुपाद जी उसको देख रहे थे और उसकी सेवा कृष्ण को प्रसन्नदायी थी, और साथ साथ श्रील प्रभुपाद जी के मुख से आने के कारण
जो कोई लीलामृत पढ़ता है वो इस कहानी को पढ़ेगा। शी इज नॉट फेमस, उस समय कोई वो प्रसिद्ध नहीं हुए, लेकिन आज जो कोई लीलामृत पढ़ेगा उसके सेवा से लोग हमेशा स्फूर्ति लेते हैं। इसलिए कई सेवा को बहुत पब्लिसिटी मिल जाता है परंतु कृष्ण की प्रसन्नता नहीं मिलती है, और कई सेवा ऐसे है जिसे कोई पब्लिसिटी मिलती नहीं है आज, परंतु कृष्ण को प्रसन्न करता है। और आगे जाकर क्योंकि निष्ठा के साथ ऐसी सेवा की है तो भगवान श्री चैतन्य देव प्रसन्न होकर उनको उनका उदाहरण देकर दूसरे भक्तों को स्फूर्ति देते कि इनके बारे में उल्लेख करो। जैसे प्रभुपाद जी ने कहा था कि जो कोई जो म्लेच्छ देशों में प्रचार करेगा उनके चरण की धूली हम अपने सिर पर लेंगे और श्री चैतन्य महाप्रभु बड़े प्रसन्न हो जाएंगे। तो कोई प्रयास कर सकता है कि चलो जाकर हम प्रचार करेंगे वहां, लेकिन साथ साथ हम ये भी देखते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु एक साधारण सेवा से ही प्रसन्न हो जाते थे। अगर किसी के अंदर योग्यता नहीं है, शक्ति नहीं है ऐसे प्रचार करने के लिए, लेकिन अपने सेवा में संतुष्ट है, उसको प्रेम से कर रहा है, तो उसे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे चैतन्य चरितामृत में अद्वैत आचार्य की पत्नी सीता ठाकुरानी, जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण किया और वो वृंदावन की ओर भागने लगे, जोर जोर से वृंदावन की ओर भागने लगे, तब नित्यानंद प्रभु जान गए अब अगर महाप्रभु वृंदावन चले जाएंगे तो जिस कारण के लिए यहां आए हो है वो कार्य होगा ही नहीं, वो अपने सात्विक विकार में इतने मग्न हो जाएंगे तो फिर प्रचार कौन करेगा, कौन सारे जीवों का उद्धार करेगा। तो नित्यानंद प्रभु का कार्य था उनको रोकना, लेकिन बोलकर रोक नहीं सकते थे। उन्होंने क्या किया, आयोजन किया अलग अलग उस गांव में जाकर, जब महाप्रभु उनसे पूछेंगे कि यमुना के लिए कौन सा रास्ता है, तो उन्होंने क्या किया, उनको कह दिया था कि आप बताना उनको गंगा का रास्ता बताओ जो ईस्ट के डायरेक्शन पे जाएगा, पूर्व की दिशा पर जाएगा, नॉर्थ की दिशा पे नहीं। तो तीन चार लोगों से महाप्रभु ने पूछा, उनको सब कहा गया इधर है यमुना, इस दिशा में बहती है। तो श्री चैतन्य देव ने क्या किया, उनको लगा कि मैं वृंदावन जा रहा हूं, जैसे निकट निकट आ रहे थे उनकी उनका जो प्रेम बढ़ रहा था, उनको लग रहा था मैं यमुना पे नजदीक हूं, मथुरा आ जाएगा, वृंदावन आ जाएगा, लेकिन जब उनका नाव तट पर आ गया, सामने देखा उन्होंने अद्वैत आचार्य को, वो बड़े चकरा गए, अद्वैत आचार्य यहां क्या कर रहे हैं। तब उनको समझ में आ गया कि नित्यानंद ने उनको धोखा दिया। तो अद्वैताचार्य ने कहा महाप्रभु से कि जहां आप हो वही वृंदावन है, जहां आप निवास करते हो वही वृंदावन है। और उनको अपने घर लेकर आए, उनको कपड़ा दिया, नया वस्त्र दिया। फिर बाद में श्री चैतन्य देव के लिए वो भोजन देना चाहते थे और मंदिर में गए, भोग मंदिर में भगवान को भोग लगाया गया था। और जब महाप्रभु ने देखा भोग भगवान के लिए जो अर्पण किया हुआ है, इतना अलग अलग, श्री कविराज गोस्वामी इतना सुंदर वर्णन करते उसका, जो महाप्रभु का सबसे बड़ा तत्व ज्ञान वर्णन करने वाले कविराज गोस्वामी, वो क्या वर्णन कर रहे हैं, वो केले के पत्ते का वर्णन कर रहे, कैसे केला पत्ता था, किस पेड़ से निकला हुआ था, जहां 32 ऐसे जो बंच केला होता है उसी पेड़ से वो केले के पत्ते थे, जो टोकरी जो कटोरी बनाई गई थी वो भी केले के पत्ते के थे, और वो कैसे थे, वो टिल्ट नहीं होते थे, झुकते नहीं थे, स्ट्रेट बैठे हुए थे, और वो भी ऐसे 32 बंच केले के पेड़ से निकले हुए थे, ये सब वर्णन किया हुआ है। और क्या क्या पदार्थ बना हुआ था, जो चावल है उसमें घी वो नीचे निकल रहा था, जैसे कि सुमेरु माउंटेन जो जो सोने का पर्वत है उसके समान लग रहा था। वो महाप्रभु देखने लगे उसे, सब जब देखने के बाद श्री चैतन्य देव कहते हैं अद्वैत आचार्य को, जिसने इसको बनाया है, जो कोई इसको बनाया हुआ है, वो कृष्ण को इतना प्रसन्न किया है, उनके चरणों की धूली मैं जन्म जन्मांतर मेरे सिर पर रखूंगा। भोजन बनाना हमें लगता है कि क्या है, आसान काम है, लेकिन इसी भावना से बनाएंगे तो फिर वो कृष्ण को प्रसन्न नहीं देता। ये कितना महत्व दिया गया है चैतन्य चरितामृत में, केवल भोजन बनाने में। और श्री चैतन्य महाप्रभु क्या कह रहे कि ऐसे भक्तों की चरण धूलि में सिर पर जन्म जन्मांतर रखता हूं। कितने सारे पेजेस इसके बारे में वर्णन किया गया। रागे वर झाली दमयंती थी, वो महाप्रभु के लिए अलग अलग प्रकार का भोजन बनाती थी जब वो आते थे जगन्नाथपुरी के लिए। ऐसे पदार्थ बनाना जो सब्जी उसको सुखाकर उसका पाउडर बनाकर लेकर आती थी, ताकि जब महाप्रभु कुछ खाएंगे अजीर्ण हो जाएगा तो ये बिटर सब्जी खाने से, कड़वा सब्जी खाने से क्या होगा, पेट ठीक हो जाएगा। ये सब सोचकर लेकर आती थी, सब एक अलग अलग थैली में डालकर। और महाप्रभु उसको साल भर उपयोग करते थे, उसको कई वस्तु तुरंत उसको स्वीकार करते थे और कई वस्तु उसको साल भर के लिए उपयोग करते थे। एक बार एक भक्त शिवानंद सेन के पुत्र शिवानंद सेन उनको बहुत खिलाया, बहुत बड़ा फीस्ट खिलाया, और बहुत बड़ा फीस्ट खिलाने के बाद क्या हो जाता है, पेट खराब हो जाता है, इनडाइजेशन हो जाता है। तो जब इनडाइजेशन हो गया, अगले दिन उनके पुत्र ने उनको भोजन के लिए बुलाया, तो महाप्रभु सोचने लगे कल ही फीस्ट हो गया। तो अगले दिन जब उनके पुत्र ने बुलाया, उन्होंने क्या किया, जानबूझकर, क्योंकि महाप्रभु ने कल जो चावल खाया घी खाया उसके कारण बड़े प्रेम से किया हुआ है, और कहने लगे देखो फूल की माला बनाना कोई साधारण चीज नहीं है, हम परंपरा से कितने साल से इसको बना रहे, आजकल नहीं, इसलिए ऐसे कोई सेवा को नहीं कर सकता, लेकिन सब लोग कुछ ना कुछ सेवा कर सकते हैं, आपने इतना अच्छा से सेवा किया है, आपको मैं एक विशेष प्रसाद देता हूं। उन्होंने क्या किया, उनको विशेष प्रसाद दिया। राधा गोविंद मंदिर में जो विजय मूर्ति है, जो पालकी में जाता है भ्रमण करते हैं, हर एक मंदिर में जो मेन डीटी के साथ में एक विजय मूर्ति होती है, मेन डीटी बाहर जाते नहीं है लेकिन उनको प्रतिनिधित्व करने वाले मूर्ति वो भ्रमण करते रहते सब जगह में। वहां राधा गोविंद मंदिर में विजय मूर्ति है गौर गोविंद देव, उनके जो प्रसाद है उन्होंने उनको प्रसाद के रूप में दिया। वो ऐसे सबको बांटते नहीं है, विशेष प्रसाद उनको दिया, एक गौर गोविंद का प्रसाद है इसको स्वीकार करो। फिर मंदिर में आ गए बॉम्बे, फिर 8 दिन के बाद उनका दीक्षा हो गया, और दीक्षा का नाम उनको क्या मिला, गौर गोविंद दास। तो इस प्रकार से हम देखते हैं सब कनेक्शन होता है, जब प्रेम से प्रामाणिकता से जो कुछ भी सेवा मिल जाते हो करने से क्या होगा, वो कृष्ण को प्रसन्न देने वाली है। और ऐसे करने से कृत्रिम रूप से समानता नहीं आएगा, क्लासलेस सोसाइटी बनाने का जो प्रयास है, क्लासलेस सोसाइटी यानी कि क्या, एनिमलिस्टिक सोसाइटी, प्राणियों का समाज हो जाएगा। क्लासलेस सोसाइटी यानी कि सबका उद्देश्य क्या है, कृष्ण की सेवा करनी है, परंतु कृष्ण की अलग अलग सेवा होती है और अपने स्वभाव के अनुसार उस सेवा को करना और उसमें प्रगति करने के लिए प्रयास करना, ये श्री चैतन्य देव का आंदोलन है। और जब अलग अलग प्रकार से कोई विग्रहों की सेवा करेगा, कोई कुकिंग का सेवा करेगा, कोई प्रचार का सेवा करेगा, तो ऐसे करने से क्या होगा, श्रील प्रभुपाद जी का जो आंदोलन है वो अपने आप तेजी से आगे बढ़ता रहेगा और लोग अपने अपने सेवा करते करते क्या होंगे, वो संतुष्ट हो जाएंगे। प्रचार करने वाले भी, एक नया किताब आया हुआ है, उस किताब का नाम है सॉल्टेड ब्रेड, ना सॉल्टेड ब्रेड। आप सोचेंगे हरे कृष्ण में सॉल्टेड ब्रेड से क्या मतलब, ब्रेड तो हम भगवान को अर्पण नहीं करते। ये रशियन भक्तों की कहानी है, जब आयरन कर्टन था जो कम्युनिस्ट राज्य था रशिया में, उस समय बहुत कम मात्रा में भक्तगण वहां प्रचार किया करते थे, और प्रचार करना बहुत कठिन था, बहुत बार पकड़े जाते थे। सोचो कम्युनिस्ट देशों में ड्रग्स और बाइबल या कोई धर्म ग्रंथ उनको समान दृष्टि से देखा जाता था। दोनों भी ड्रग्स है, दोनों भी लोगों की बुद्धि को भ्रष्ट कर देती है। अब ड्रग्स लो या शास्त्र पढ़ो, वो क्या करेगा, वो लोगों को प्रैक्टिकल जीवन से दूर कर देगा। इसलिए ड्रग्स भेजो या भगवद गीता बाइबल भेजो, शिक्षा कितने साल के लिए दंड, 20 साल के लिए आपको जेल जाना होगा। तो ये भक्तगण नियमित रूप से किताबों का वितरण करते थे, पकड़े जाते थे। तो कम्युनिस्ट लोग कई अधिकारी कहा करते थे, देखो आपको अगर प्राइवेटली प्रैक्टिस करना है प्राइवेटली प्रैक्टिस करो, लेकिन बाहर आकर इसका वितरण मत करना, डोंट डिस्ट्रीब्यूट आउटसाइड, ये गलत है। फिर वो भक्त कहते थे, लेकिन महाप्रभु ने उल्टा कहा है, आप कह रहे हो कि बाहर आकर मत प्रचार करो, लेकिन महाप्रभु कहते हैं कि हर एक के घर घर में जाओ और प्रचार करो। फिर मैं किसकी बात सुनो, आप अधिकारियों की जो कह रहे हो कि आपके घर में रहकर जपा करो कीर्तन करो बाहर मत जाओ, या महाप्रभु की? तो ऐसे करते रहे। तो एक बार ये 2-3-4 डिवोटियों को उन्होंने पकड़ लिया, एक का नाम दीक्षा भी नहीं हुआ था, वो पकड़े गए जेल में, उनका दीक्षा हो गया। उनका नाम था सची सुत प्रभु, जेल में उनका दीक्षा हो गया। और जब वो जेल में चले गए उनको 4 साल जेल में रखा, और इतने सारे कष्ट उनको सहन करना पड़ा। हर एक भक्त को इस किताब पढ़ना चाहिए। ऐसे उनको मारते थे, एक जेलर था वो आकर भक्तों को ऐसा मारता था, उनको जमीन पर सुला देता था और अपने जूते से उनके मुख पर मारता था। और किसी ने उनको पूछा, तुम ऐसा क्यों करता है, उन्होंने क्या किया? बोला, जब तक नहीं ऐसा करूंगा मगर मैं घर में जाकर मेरी पत्नी पूछती है कि तुमने हरे कृष्ण लोगों को मारा कि नहीं, अगर मैंने ना किया तो मुझे खाना नहीं मिलेगा और मैथुन सुख नहीं मिलेगा। तो देखो कितने राक्षस प्रवृत्ति का था, और उसकी पत्नी उसे बढ़कर तो ऐसे मारता था। तो फिर उनको खाने के लिए खाएंगे क्या, रशिया में खाने के लिए है क्या, एक तो आलू और कैबेज या मांस, और भक्तगण तो मांस नहीं खाते। फिर उनको 3 ब्रेड मिलता था खाने के लिए, और वो ब्रेड में इतना दुर्गंध आता था उसको खा नहीं सकते थे। फिर लोग क्या करते थे, उसको खिड़की के बाहर, जेल में जो खिड़की होती है छोटी सी, उनको टुकड़ा करके उसको बाहर रखते थे। फिर जब वो सूख जाता था दुर्गंध थोड़ा कम हो जाता था, फिर वो ब्रेड खाने का और आज का ब्रेड फिर से खिड़की पे रख देने का सुखाने के लिए। फिर इसके ऊपर थोड़ा सा उनको शक्कर मिलता था, वो शक्कर डालते थे। फिर थोड़े दिन के बाद शक्कर बंद हो गया, केवल उनको सॉल्ट मिलता था, इसीलिए उसका नाम है सॉल्टेड ब्रेड। ऐसे ये भक्तगण एक दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए नहीं, 3 साल तक खा रहे थे केवल ब्रेड, नमक और थोड़ा सा पानी, बाकी खाने के लिए क्यों योग्य नहीं था। इसके कारण उनके दांत, कैल्शियम न होने के कारण उनके दांत निकलने लगे, और मार खाने के कारण, सब जगह में मारना, इतना मारते थे उनको। लेकिन फिर भी वहां भी जाकर और प्रचार करने लगे, बाकी कैदियों को भक्त बनाने लगे। उनके पास छोटा सा पंचतत्व का चित्र था, उसको अर्पण किया करते थे। अगर उनको मिलने के लिए कोई परिवार के लोग आना हो तो ब्राइब देना पड़ता था अधिकारियों को, बहुत बड़ा ब्राइब, पैसा देना पड़ता था। तो उस समय उनको लगा कि हम जिंदगी भर ऐसा ही रहेंगे, जब तक कम्युनिस्ट राज रहेगा तब तक बाहर आएंगे ही नहीं, और ऐसा नहीं लग रहा था कि कम्युनिस्ट जो राज है उसका पतन हो जाएगा। लेकिन फिर भी वो तैयार थे, वो जानते थे कि हम सड़कर यहां मर जाएंगे लेकिन हम हमारी भक्ति नहीं छोड़ेंगे। तो फिर ऐसे रहते रहे। तो उसमें सचिसुत प्रभु को बीमारी हो गई, टीबी का रोग हो गया। उन्होंने क्या किया, सबको अलग अलग कर दिया, सब भक्त लोग एक साथ में नहीं रहते, अलग अलग प्रिजन में रह रहे थे। सचिसुत अकेले रह गए, उनके साथ कोई भक्त नहीं थे, और कोई जानता नहीं था कि उनको क्या हो रहा है। तीन साल के बाद उनके घर में ऐसा समाचार हो गया कि सच्चे सुत की मृत्यु हो गई जेल में, उनका शरीर छूट गया। कोई नहीं जानता था कैसे कैसे मर गए, क्या हो गया। और उनका जो मित्र था, खास बचपन से उनका जो मित्र था, वो भी भक्त बन गया था, उसका नाम था सर्वभावना। वो ये किताब लिखते हैं। उनको चिंता थी कैसे उनका शरीर छूटा होगा, वो क्या भगवान का चिंतन किए क्या, क्या हुआ, कैसी उनकी मृत्यु हो गई, कोई जानकारी नहीं थी। सर्वभावन कम्युनिस्ट का जो राज्य पतन हो गया, गार्बाचोव ने सबको छोड़ दिया, हरे कृष्ण स्वतंत्र हो गए, वो धर्मयुक्त अपना धर्म का पालन कर सके। फिर सर्वभावना के मन में हमेशा ये जानने की इच्छा थी कैसे मेरे मित्र की मृत्यु हो गई। फिर एक बार वो लोग हरिनाम कर रहे थे, इसमें सर्वभावन प्रभु नहीं थे, दूसरे भक्तगण थे। तो एक व्यक्ति ने हरिनाम को देखा, वो भाग कर आया, बोला मुझे कुछ कहना आप लोगों को। बोला आपका ही एक व्यक्ति था, आप जैसा लगता था, मेरे साथ में वो जेल में रहता था और उसकी मृत्यु बहुत विचित्र प्रकार से हो गई। बोला कौन है, इसका नाम क्या है? तो उन्होंने बताया ये उसका नाम है। तो जान गया, अरे ये तो सर्वभावन का बारे में बता रहा है, सच्चे सुत के बारे में बता रहे हैं। बोला बताओ कैसी उसकी मृत्यु हो गई। वो कहने लगा कि इतना निष्ठावान था अपने जप में, हर रोज ऐसे बीमारे भी वो 16 माला जप कर रहा था, कभी उसने नहीं छोड़ा। उन्होंने बताया इसी माला पर वो हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करता था। मैं तो बड़ा नास्तिक था, अभी भी मैं नास्तिक हूं, लेकिन उसकी मृत्यु को देखकर, जिस प्रकार से उसकी मृत्यु हो गई, वो देखकर मुझे लगता है कि मेरी भी मृत्यु ऐसी होनी चाहिए। मतलब कैसी मृत्यु हो गई? वो कहने लगा कि जब एक दिन वो इस जो व्यक्ति अभी कहानी सुना रहा है उसको कहा कि मेरे अब बाल है उसको काट दो, उसको शेव करो। तो ये जो उनका सहयोगी था प्रिजन में, कारागृह में, उन्होंने क्या किया, कोई ऐसे ब्लेड लेकर उसके सारे बाल निकाल दिए, चोटी रखा, सिक्का रखा। उधर स्नान करने के लिए भी जगह नहीं होती है और ठंडा -20 -30 -40 तक चले जाती है। तो वहां उन्होंने क्या किया, टीबी हुआ है, शरीर जर्जरित हो गई, जीर्ण हो गई है, उसमें किसी न किसी प्रकार से वो स्नान करने लगे, अपने आप को साफ कर लिया और जो कारागृह में जो बेडशीट है उसको धोती के समान बांध लिया। और उनके पास बीट बैग नहीं है, माला नहीं है, कंटी नहीं है, तिलक नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, जो पेस्ट है उनको पेस्ट दिया जाता था उसका तिलक बनाया और अपने शरीर में लगा लिया सब जगह में। और वहां बाकी कारागृह वासियों के लिए अलग अलग न्यूज़पेपर मैगजीन पड़े रहते थे, उसके कलर पेजेस को निकालकर उसका फूल बनाया और एक कागज दूसरे कागज को ऐसे माला के समान बनाकर अपने गले में पहन लिया, वो बता रहे ये व्यक्ति। फिर छोटा सा एक कपड़ा जो था उसको बीट बैग के समान बनाया और उनकी जो माला थी, जो ब्रेड से बनी हुई माला, उन्होंने बताया कैसे वो लोग माला बनाते थे। ब्रेड को पानी में डालकर रखते थे, उसमें शक्कर डालते थे, उसको सड़ाते थे 7-8 दिन, फिर उसको सुखाते थे, फिर वो क्या बन जाता था, एकदम हार्ड बन जाता था, फिर उसको उससे माला बनाते थे। वैसी माला थी और बीड बैग बनाया उस कपड़े से, उसको गले में लटकाकर जप करने लगे, तिलक हो गया, शेव हो गए, धोती कुर्ता है, बीड बैग है, बीड है और जपा करने लगे। और उसी समय ये जो सहयोगी थे उनको बुलाया डॉक्टर ने कि आप आ जाओ, आपको इंजेक्शन देना है। फिर ये अकेले रह गए, हरि नाम जप कर रहे, बहुत खांसी आ रही है, शरीर पूरा जीर्ण हुआ है, और बैठ गए पद्मासन में बैठकर वो जपा करने लगे। फिर ये सहयोगी जो कहानी सुना रहे उनको डॉक्टर लोग लेकर गए, आधा घंटे के बाद वो आए। और जब आधा घंटे के बाद आने के बाद देखा सच्चिसुत अभी भी ऐसा ही बैठा हुआ है, माला है हाथ में लेकिन मुख नहीं हिल रहा है, चेहरे पे हंसी है। तो उसने पूछा सच्चिसुत, वो कुछ बोल नहीं पा रहा है। वो कुछ नहीं खा क्योंकि इन्होंने इंजेक्शन लिया था, लेट गए, आकर लेट गए, 5 मिनट हो गया, 10 मिनट हो गया, 15 मिनट हो गया, बोले इसमें कुछ आवाज नहीं निकल रहा है, मंत्र मोल नहीं रहा, तो जाकर थोड़ा सा धक्का लगा तो उनका शरीर गिर गया। बोला इस प्रकार से उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। पद्मासन में बैठकर हाथ में माला रखते हुए जप करते हुए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उनका शरीर छूट गया। जब शरीर वो छोड़ रहे थे, ये सर्व भावना प्रभु कह रहे थे कि भगवान ने क्या किया, उसको भी हटा दिया उधर से, चले जाओ तुम सहयोगी को, मैं और मेरा भक्त रहेगा, हम दोनों ही रहेंगे। वो कह रहे थे ये गारंटी है, जिस प्रकार से वर्णन कर रहा था कि उसके चेहरे में कोई दुख नहीं था, भय नहीं था, और ऐसा कभी नहीं लगा कि मैं मर रहा हूं, मेरे आजू बाजू में भक्तगण नहीं है, कौन मेरे बारे में जानेगा। वो जब शरीर छोड़ रहे थे तब उनके बारे में उनको क्या जानकारी थी कि हमारे मृत्यु के बारे में किसी को भी कुछ समझ में नहीं आएगा। ऐसे बिना कुछ जानकारी से मुझे मरना होगा, ऐसे उनका अंडरस्टैंडिंग था। लेकिन फिर भी उनको दुख नहीं लगा, उनको यही आनंद था कि मेरे गले में कंठी है, तिलक है, मैंने शेव किया है, धोती कुर्ता पहना है, बीड बैग है, और हरे कृष्ण मंत्र का मैं जप कर रहा हूं, यही उनको आनंद था। तो व्यक्ति कह रहा था ये जो मृत्यु है, ऐसी मृत्यु मुझे भी चाहिए। देखो इन्होंने आकर कहा, फिर ये भक्त ने सुन लिया, फिर ये डिवोटी ने उसके बारे में अपनी किताब में लिखा, अभी उसकी कहानी सबको सब लोग जान रहे। जब मर रहे थे तब किसी ने नहीं जाना था, केवल भगवान ही जान रहे थे। इसलिए कृष्ण सेवा करते समय अगर हम चाहते कि मेरे बारे में लोग जानना चाहिए, मेरा नाम बढ़ना चाहिए, तो फिर ऐसी सेवा है वो शुद्ध सेवा नहीं है, उसमें कृष्ण को प्रसन्न नहीं देता, वो कृष्ण को प्रसन्न नहीं देता। बल्कि जब प्रामाणिकता से मग्न होकर तल्लीन होकर जब हमारी सेवा हम करते हैं, लंदन में कोलंगना माता जी है, वो एक साउथ अमेरिकन है, कोई उसको जानते नहीं है, हर रोज वो राधा गोकुलानंद के लिए संदेश बनाती है, संदेश और बर्फी बनाती है, और कितने सारे भक्त कहते हैं, तमाल कृष्ण महाराज कहा करते थे, शिवराम महाराज कहते हैं कि जो कोई उसने बनाया हुआ संदेश को ग्रहण करेगा, गारंटी उसको कृष्ण प्रेम मिलेगा। सुबह 1:30 बजे उठ जाती है, 70 साल की बूढ़ी हो, 70 ईयर्स ओल्ड, 70 साल की माता जी है, 1:30 बजे उठकर पूरा जपा कर लेती है, फिर चालू हो जाता है सुबह संदेश बनाने के लिए, उसमें अलग ही टेस्ट आता है। और कोई भी क्लास दे, उनका क्लास सुनेगी, फिर आकर बोलेगी आपने इतना अच्छा क्लास दिया, आकर आपसे आशीर्वाद मांगेगी। देखो उसका सेवा वही है, कितने साल से भगवान के लिए केवल संदेश ही बनाना, वो कभी ये नहीं कहती कि मुझे प्रवचन देने के लिए चांस नहीं मिलता, नहीं, वो संदेश बनाकर सबको प्रवचन देती है, प्रवचन देने वालों से ज्यादा प्रवचन या उनको इंस्पिरेशन करती है, और लोग उसके संदेश खाने के लिए आते क्योंकि भगवान उसको स्वीकार करते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु ने अलग अलग भक्तों को अलग अलग सेवा देते हुए जो उस सेवा में संलग्न हो गए उनमें उनको परिपूर्णता मिल गई। यह है भक्ति, कि है हमारा बिजनेस क्या है, प्रचार करना, ये महत्वपूर्ण, सबसे यहां प्रोडक्ट क्या है कि लोगों को भक्त बनाना। लेकिन कई लोगों को मार्केट में रहना होगा, मार्केटिंग में रहना होगा, कई लोगों को प्रोडक्शन में रहना होगा, कई लोगों को मेंटेनेंस में रहना होगा, अलग लोगों को अलग अलग सेवा करना होगा, अलग अलग सेवा करते अपने अपने सेवा करने से क्या होगा, निश्चित रूप से वो सब कुछ प्रचार के कार्य में ही मदद करेगा। और ऐसे कम्युनिटी को देखकर लोग केवल तत्वज्ञान से आकर्षित नहीं होते, जब आकर वो देखते हैं, हम एक उद्योगपति से मिले थे हाल ही में दिल्ली में, वो भारत के सबसे बड़े पब्लिशिंग कंपनी वाले, उनका पब्लिशिंग बिजनेस 1000 करोड़ का है, और किसी ने उन्हें हमें हमारे मंदिर में लेकर आया था। मंदिर इतना सुंदर बनाया हुआ है, गार्डन इतना सुंदर है, विग्रहों की सेवा होती है, सब उनको अच्छा लगा। लेकिन सबसे अच्छा उनको क्या लगा, क्या योजनाबद्ध माताजी लोग गार्लैंड बनाते। शी द लेडी बिजनेसमैन, वो बिजनेसमैन लेडी है, वो कहने लगी जो बनाने का तरीका है कितना सुंदर है, देखो लोगों को क्या इंप्रेस करता है। एक न्यूज़पेपर आर्टिकल आया था हाल ही में, राधा गोपीनाथ में जो कुकीज बनते हैं, बहुत फेमस कुकीज है, लोग बहुत पसंद करते हैं। और वो कुकीज कौन बनाता है, हमारे गौर गदाधर प्रभु अपने वाइक विच प्लेस इज दैट तीर्थकुंडे के। कभी उन्होंने कुकी देखा भी नहीं था कुकी क्या होता है। अलग अलग रशियन केक्स कुकीज बनाते हैं और न्यूज पेपर आर्टिकल में लिखा है सुंदर राधाकुंड प्रभु और ऋषिकेशानंद प्रभु कुकी के थाली लेकर खड़े हुए, कलर्ड फोटो है। तो उसका आर्टिकल बिगिन होता है, प्रारंभ होता है कि शाय गौर गदाधर मेक्स दिस कुकीज। उन्होंने अपना फोटो नहीं दिया, ये इस कुकियों को बनाते हैं। देखो अगर कोई प्रेम से और इतने संतुष्ट अपने सेवा में है। हमारे मंदिर में एक वरिष्ठ भक्त हो, 1990 में वो ज्वाइन हुए थे, उनके बाद में अभी 110 ब्रह्मचारी है, तो उसमें से 95 ब्रह्मचारी उनके बाद में आए हुए हैं। वो प्रचार नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्रचार कर रहे अपने सेवा के द्वारा। और कभी उनको ऐसा नहीं लगता कि अरे मेरे पीछे आकर लोग प्रचार कर रहे हैं, उनके इतने सारे काउंसिल है, 50 लोग उनके सामने बैठे रहते हैं, उनकी पूजा करते हैं। नहीं, वो अपने सेवा में संलग्न है, कुकीज बनाते रहेंगे, केक्स बनाते रहेंगे। तो क्योंकि अपने सेवा में संलग्न है इसलिए आज तक वहां मंदिर में है, 19 साल के बाद भी। या पेड़ को बढ़ाते रहते हैं। तो इस प्रकार से जो अपने सेवा में संलग्न है उसमें संतुष्ट है, और दूसरे सेवा के बारे में मुझे अगर ये सेवा करना होता तो कितना अच्छा था, ऐसा नहीं सोचता, इसलिए वो भी संतुष्ट है, भगवान भी संतुष्ट है और मैनेजमेंट भी संतुष्ट है। ये सिद्धांत को याद रखते हुए अगर हम सेवा करते रहेंगे तो फिर कम्युनिटी क्या हो जाता है, स्ट्रांग बन जाता है। और उस कम्युनिटी को देखकर, अलग अलग प्रकार के विविध सेवाओं को देखकर, जो गीता में प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, इन वैष्णव सोसाइटी देयर इज मल्टीपल एंगेजमेंट। अगर आप इधर फिट नहीं हो गए तो इधर फिट हो सकते हो, इधर फिट नहीं हो सकते तो इधर फिट हो सकते हो। ऐसा सेवा नहीं है जिससे कि आप कहोगे कि मेरे लिए कोई अवकाश नहीं है, मेरे लिए कोई आशा नहीं है। नहीं, हर एक भक्त के लिए अपने अपने प्रोपेंसिटीज को अपनाने के लिए श्री चैतन्य देव ने क्या किया है, वराइटीज ऑफ सेवा बनाई है। जो बड़बड़ करने वाले प्रवचन देते रहेंगे, जो गाने वाले गाते रहेंगे, वो भी उनका भी उद्धार हो जाएगा, और जो ध्यान पूर्वक सुनने वाले हैं उनका ज्यादा उद्धार हो जाएगा। और जो माला बनाते रहेंगे, जो विग्रहों की सेवा करते रहेंगे, जो पुस्तक वितरण करेंगे, जो फार्म में, अब गोकुल धाम में जो बन रहा है कोई जानता नहीं है, नोबडी नोस, कोई जानता नहीं, लेकिन कृष्ण देख रहे, प्रभुपाद जी देख रहे, वो जो घर बनाया है, आप लोग भी नहीं गए उधर, 99 यू आर नॉट अलाउड टू गो ऑल्सो, लेकिन उनकी सेवा चल रही है। तो इस प्रकार से कृष्ण को प्रसन्न करना, श्री चैतन्य देव को प्रसन्न करना, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और अगर भगवान चाहते हैं उस सेवा को हम मरने के बाद प्रसिद्ध करेंगे, ताकि हमारा अहंकार भी बचा रहेगा, ये भगवान की लीला है। और यही श्री चैतन्य चरितामृत में श्री चैतन्य देव इसका सुंदरता से वर्णन करते हैं। हरे कृष्ण। श्री चैतन्य चरितामृत की ग्रंथ राज श्रीमद्भागवतम की।